नाम प्रभ का परम सुखदाई, सिमर सिमर सब कलह बंजाई। प्रभु का नाम ही परम सुखदाई। परम सुखदाई का अर्थ है ऐसा सुख जो कभी नष्ट नहीं, वो सर्वोच्च सुख है। सिमर सिमर सब कलह बन जाए, उस प्रभु को सिमर सिमर के उसका स्मरण करते करते सारी कलह दूर हो जाती है, सारी कलह से छुटकारा मिलता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कलह इस देह में कहाँ है, वो मेरा मन ही है जो कमी महसूस करता है, बाहरी संसारी चीजों की आशा करता है। क्यों? क्योंकि जो भी इच्छा मन में उत्पन्न होती है उसकी पूर्ति हमारी या हमारे जीवन पद्धति के अनुसार संसार में होती है, इसीलिए वो संसार की निरंतर याद करता है और उसी में अपनी मुसीबत का इलाज ढूंढता है, यही कहिए मानसिक बेचैनी से मुक्ति चाहने की कोशिश करता है। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि मन का या मन की जितनी भी दौड़ बाहर की ओर है यही मेरी मुसीबत है। बाहर ये मन क्यों दौड़ता है? क्योंकि बचपन से लेकर जब से मेरी बुद्धि में होश आया है मुझको पता है मेरी परेशानी का जो हल है वो बाहर है, संसार में। चाहे बच्चे को माँ का अभाव खलता है तो माँ के लिए रोता है, वस्तु का अभाव खलता है तो वस्तु के लिए रोता है, लेकिन है हल हमारा बाहर ही, अंदर कोई हल नहीं है, ऐसा हमारा अनुभव होता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जब किसी सत्पुरुष का संग मिलता है, शास्त्र का संग मिलता है, सत्संग का संग मिलता है, तब हमको ये बात सिखाई जाती है कि मन की जितनी बाहर की दौड़ है ये मानसिक क्लेश उत्पन्न करने वाली है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रभु नाम प्रभु का परम सुखदाई, सिमर सिमर सब कलह बन जाए। इसका यदि विश्लेषण किया जाए तो विश्लेषण तो वास्तव में बड़ा बारीक है, लेकिन फिर भी उस विश्लेषण को हमने सीखना ही होता है, भले ही वो थोड़ा कठिन क्यों ना हो। जैसे कि मान लिया मैं जानता हूं कि संतरा कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, उसकी खुशबू कैसी होती है। मान लिया अचानक मेरे सामने कोई प्लेट में लाकर संतरा रख दे तो उसको देखते ही आपको समझ आ जाती है कि ये संतरा है, इसकी खुशबू ऐसी है, इसका स्वाद ऐसा है, इसको खाने से बड़ा मजा आता है। तो उसको देखते ही आपकी जो नेत्र इंद्रिय है वो उस पर वो एकाग्र हो जाती है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता आपको, कुछ सोच भी नहीं होती, तो सामने शंका देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। यही करें कि मेरे मन में एक खुशी की तरंग उठ जाती है। लेकिन यदि कोई ऐसी वस्तु हमारे सामने आ जाए जो देखने में सुंदर हो लेकिन उसका पता ना हो, हमको पहली बार देखी हो, तब क्या होगा? तब आपके मन के अंदर विचार चलना शुरू हो जाएगा, क्या है, कितने विचार उठेंगे ये आपको पता नहीं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो ना इंद्रिय में देखने की सामर्थ है ना मन में सोचने की सामर्थ है, इसके अंदर यदि कोई सामर्थ्य है तो मेरे कारण है, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, तो इंद्रियां मेरे लिए है, मन मेरे लिए है, इसलिए मैं कहता हूं मेरा मन है, मेरी इंद्रिय, मेरी आंख। लेकिन इसके आगे हमारी कोई सोच नहीं। शास्त्र इस बारीकी को खोलते हैं, वो कहते हैं कि आंख अपने आप में तो जड़ है ना, आंख के द्वारा मैं देखता हूं, और मैं जब आंख के साथ एक हो जाता हूं तो आप क्या कहते हो, कभी कहते हो कि मैं आंख देख रही है, मैं देखता हूं, देख आंख रही है परंतु मैं अपनी आंख के साथ एक होकर देख रहा हूं उस यंत्र। इसी प्रकार मैं मन के साथ एक होकर जो वस्तु मेरी आंख के सामने रखी हुई है उसके बारे में मैं चिंतन कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। जब सोच रहा हूं तो वास्तव में मैं मन के साथ एक हो गया, जब देख रहा हूं तब मैं अपनी इस ज्ञान इंद्रिय के साथ अर्थात आंख के साथ एक हो गया। लेकिन आप कभी भी नहीं सोचते कि इसको देखने वाला है, इसके बारे में सोचने वाला है, मैं तो अलग हूं, मन मेरा है, इंद्रिय मेरी है, जो चीज मेरी है वो तो मुझसे अलग होगी ना, मैं उसका मालिक हूं। लेकिन ये ज्ञान तो कोई सिखाता नहीं, क्योंकि सारी दुनिया एक चीज को एक ही जानती है, मैं देह हूं। अब जब मैं देह हो गया तो विचार करिए इसका एनालिसिस कौन करेगा। इसीलिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। वाणी की लाइन तो बड़ी सरल है, पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, कितनी बार इसका हमने गायन किया होगा, लेकिन ये वाणी कह क्या रही है, नाम प्रभु का परम सुखदायी, प्रभु का नाम परम सुखदायी है, उस नाम में इतना सुख है कि उसकी तुलना संसारी किसी भी सुख से की ही नहीं जा सकती, सारे सुख उसके उससे छोटे हैं, उससे नीचे हैं, ये परम सुखदायी है नाम प्रभु का। क्यों सुखदायी है, सिमर सिमर सब कलह बन जाई, मन का जितना भी क्लेश है जिनके कारण बच्चे रोते हैं, जिनके कारण समाज रोता है, जिसके कारण मैं रोता हूं, चिंतित रहता हूं, परेशान रहता हूं, बेचैन रहता हूं, ये सारी की सारी इसको कलह कहते हैं, इस कलह से मेरा छुटकारा हो जाता है जब प्रभु के नाम का सुख मुझको अंदर प्राप्त होता है। अब बताइए, जो प्रभु के नाम का सुख मेरी देह के अंदर मौजूद है, दुनिया का कोई बंधन उसके लिए नहीं, क्योंकि संसार के बाहरी जितने भी सुख के पदार्थ है हर चीज के लिए बंधन है, तो बताइए जब सारे सुख का बंधन है मुझको, कहीं पैसा नहीं है, कहीं योग्यता नहीं है, कहीं परिस्थितियां नहीं है, कहीं शरीर इस काबिल नहीं है उस सुख को भोग सके, तो कितनी पराधीनता है संसारी सुखों में। इसीलिए मनुष्य कितनी भी कोशिश पूरा कर ले वो मानसिक बेचैनी से संसारी तरीके से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए वाणी कह रही है, त्रिखा ना जाए ना मन सुख भासे, आस आस में लियो काल गरासे, तेरी सुख प्राप्ति की प्यास कभी नहीं जाती, ना कभी मन का सुख तुझको प्राप्त होता है, और इस आशा में कि कभी तो सुखी हो ही जाऊंगा तुझको काल खा लेता है, अर्थात तेरे शरीर नष्ट हो जाता है, वो दिन तेरे जीवन में कभी आता ही नहीं। सत्य मेरे बारे में ये, आप अपने साधारण से अनुभव से जरा देख लीजिए, रात्रि को किसी दिन आप सोने के लिए लेटे और दिन में कोई भी ऐसी घटना घट गई हो जिसकी बार बार आपको याद आ रही है, तो आपके मन में जब तक वो विचार चलता रहेगा आपको नींद नहीं आएगी। आप जानते हो कि मैं बिस्तर पर आराम से लेटा हूं, सारी कंडीशंस जो है वो सोने के लिए उपयुक्त है, कोई परेशानी नहीं, मैं बड़े आराम से सो सकता हूं, लेकिन फिर भी आप सोने के लिए तरस रहे हो, तो दिन की जो बात है जिसने आपको बेचैन किया था वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो बात का संस्कार कहां मौजूद है? मन के अंदर मौजूद, और मन इस देह के अंदर है। देखिए, आपको यह पता नहीं है, इस विज्ञान का नहीं पता कि मन मेरी देह के अंदर है और मन मेरा है, फिर मेरा इस पर वश क्यों नहीं चल रहा है? मन मेरा है, मेरा वश चलना चाहिए इसको, लेकिन नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जो घटना घटी है, जो बात बिगड़ी है, उसका संस्कार मन पर इतना गहरा हो चुका है कि उसकी तरंगे, उसकी याद की तरंगे बार बार मन में उठ रही हैं, जो मुझको सोने नहीं दे रही है। और सोवे कब? जब मन की तरंग उठना बंद हो जाए तब आपको गहरी नींद आएगी, चैन की नींद आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वास्तव में संसार में मुसीबत नहीं है, मुसीबत मेरे संस्कारों में, जिन संस्कारों की तरंगे मेरे मन में निरंतर उठती रहती है, जिसको ये वाणी त्रिखा कह रही है, तृष्णा, प्यास। क्योंकि मन के द्वारा ही तो आप संसार के सुख की याद करते हो, उसको भोगने की कोशिश करते हो। जब मन चाहा सुख मिलता है तो ऐसा लगता है कि मुझको बड़ा चैन मिल गया, बड़ी शांति मिल गई। इसका मतलब सारी मुसीबत तो आपके मन के अंदर है, संसार में दूर दूर तक मुसीबत है ही नहीं। और ये मन मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इस शरीर की तो डेथ हो जाती है, लेकिन इस मन की डेथ नहीं होती, ना मेरी डेथ होती। तो मैं अपने मन को साथ लेकर विज्ञान के अनुसार या अध्यात्म विद्या के अनुसार मुझको नई देह प्रभु प्रदान कर देते हैं। मन यही है, संस्कार भी वही है, कुछ नहीं बदला उसका। अब बताइए, मैं भी वही, मेरा मन भी वही, मेरे संस्कार भी वही। जब यहां सारा जन्म मुझको इस मन के द्वारा मुसीबत प्राप्त होती रही तो अगले जन्म में मुझको क्या मिलेगा? विचार करके तो इन मुसीबतों के संकल्पों को, इन मुसीबत के संस्कारों को मैंने और गहरा करके यहां संसार से मैंने विदाई ली, वर्तमान देह से मैंने विदाई ली, लेकिन मेरी मौत भी नहीं। तो सतपुरुष कहते हैं हर जन्म तेरा ऐसा ही होता है, और हर जन्म में तू धोखा ही खाता है, बेचैनी लेकर जीता है, बेचैनी लेकर संसार से विदा हो जाता है। तो फिर कभी तो अपना रास्ता बदल, तेरे पास बुद्धि भी तो ईश्वर ने दी, उसका उपयोग तो क्यों नहीं कर रहा? कौन सी बुद्धि? वो बुद्धि जो ये वाणी आपको दे रही है, वाणी आपको सिखा रही है, जो निर्णय वाणी आपके लिए कर रही है, संसार के बारे में, मेरे बारे में और ईश्वर के बारे में। मैंने इस बुद्धि को तैयार करना था ताकि मैं मानसिक क्लेश से बच सके, लेकिन मैंने क्या करा? संसारी बुद्धि सीख ली, जो बुद्धि एक ही चीज सिखा रही है, संसार की कमाई जितनी बढ़ा लोगे, पदार्थ जितने ज्यादा इकट्ठे कर लोगे, उतना ही तुमको सुख मिल जाएगा, उतना ही तुमको चैन मिल जाएगा। जो मेरे जीवन का जहर था वो मैंने कोशिश करके, इतना कीमती जन्म बर्बाद करके मैंने उस जहर की कमाई करी और इकट्ठा करके इस संसार से मैं जा रहा हूं, क्योंकि वो सारा जहर मेरे मन के अंदर सुरक्षित है। तो ऐसी बड़ी गलती करके मेरा क्या होगा, जरा विचार करके। इसलिए वाणी कह रही है, याद रखिए, करो पुकार सुनियो गुनी मीता, बिन हरि भगत सरब दुख रीता। बिना हरि भक्ति के तू ए से लेके जेड तक जितना भी संसारी कर्म कर रहा है ये तेरे लिए भविष्य का दुख है। वर्तमान में भी तू मानसिक क्लेश से गुजर रहा, मुसीबतें झेल रहा है, चैन से तुझको जीने को नहीं मिल रहा, लेकिन भाई खत्म नहीं हो गई ये तेरी कमाई, तेरे अगले जन्म में सास है। कितना बड़ा मूर्ख इंसान हूं मैं, बेचैनी की कमाई करके मैं यहां से ले जा रहा हूं, इसका मतलब अगला जन्म इससे भी बुरी हालत में मुझको मिलना है। यदि मैंने वर्तमान जन्म में अपनी बीमारी को नहीं समझा तो मैं उसका इलाज कैसे करूंगा। तो बात चल रही थी कि मेरी आंख के सामने संतरा रखा हुआ है, मैं उससे परिचित हूं, उसके स्वाद से परिचित हूं, उसके रंग से परिचित हूं, उसकी खुशबू से परिचित हूं, तो आंख उस पर टिक जाती है। आंख टिकती है तो मन के अंदर एक प्रसन्नता होती है कि अब ये खाने को मिलेगा मजा। तो अब मैं जो विचारवान हूं, मैं जो उसके गुण दोष के बारे में चिंतन कर सकता हूं, मैं उसको नहीं कर रहा हूं, बल्कि मन का शिकार हूं कि मन में संसार बैठा हुआ है कि पिछली बार संतरा जब खाया था तो कितना मजा आया, तो इस संतरा को खाऊंगा तो मजा आया। हो सकता है डॉक्टर ने मना किया कि संतरा खाओगे तुमको जो है एलर्जी हो जाएगी, किसी किसी को होती है, नींबू से एलर्जी है, संतरे से एलर्जी है, लेकिन जब मजे का संस्कार मन में जागृत हो रहा है तो भूल गया, उस ज्ञान को भूल गया और संतरा खा बैठा, फिर आपने एलर्जी की मुसीबत झेली। इसका मतलब हुआ कि मैं हूं कौन से, मन मेरे लिए मुसीबत है, इंद्रिया मेरे लिए मुसीबत है, वस्तु मेरे लिए मुसीबत है, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं जो कभी इंद्रिय के साथ एक हो जाता है, कभी मन के साथ एक हो जाता है, कभी शरीर के साथ एक हो जाता है, कभी वस्तु के साथ एक हो जाता है, मैं हूं कौन। सत्पुरुष कहते हैं तू वही चेतन है जो जान रहा है कि ये क्या है, तू वही चेतन है जो जान रहा है तेरे मन में कौन सा संकल्प उठ रहा है, तेरे मन में कौन सा संस्कार जागृत हो रहा है, तेरे मन के अंदर कौन सी इच्छा जागृत हो रही है, तू जानता है इस बात को, तो तू जानने वाला है, लेकिन तू अपने आप को भूला बैठा, कभी मन हो जाता है, कभी तू इंद्रिय हो जाता है, और पशु प्रवृत्ति, इसी को पशु प्रवृत्ति कहते हैं कि तुझको अपना होश ही गायब हो जाता है। मनुष्य जन्म में प्रभु ने हमको बुद्धि दी, मैं इस बारीक ज्ञान को सीख सकता हूं, इसको समझ सकता हूं, इसलिए प्रभु संसारी पदार्थों के मुकाबले में, संसारी ज्ञान के मुकाबले में एक और ज्ञान दे रहे हैं। वो कहते हैं नाम प्रभु का परम सुखदाई, गुरु ये ज्ञान दे रहा है, नाम प्रभु का परम सुखदाई, सिमर सिमर सब कलह बन जाई, तेरा सारा मानसिक क्लेश दूर हो जाएगा और परम सुख की तुझको प्राप्ति होगी। वो कैसा परम सुख होगा, इस वस्तु से मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा, प्रभु नाम से मिलेगा। और हमारे लिए प्रभु नाम क्या है, जो हम याद करते हैं महामंत्र है, और सारा विज्ञान मंत्र का एक ही बात कह रहा है कि मंत्र गुरु ईश्वर एक चीज है, गुरु भी अंतर्यामी है, मंत्र भी अंतर्यामी है और ईश्वर भी अंतर्यामी है। मंत्र अंतर्यामी क्यों है, क्योंकि ये मंत्र अंदर ही प्रकट हुआ है। महाराज जी की जब 13 वर्ष की आयु थी तो हम बार बार सुना है जीवनी में, पढ़ा भी है वाणी में कि 13 अक्षर का मंत्र महाराज जी को 3 दिन में प्रकट हुआ था। ओम धम सत्यम पहले दिन, निरंकार जन्मा द्वैत प्रभा दूसरे दिन, सर्व व्यापक कल्याण मृत परमेश्वराय नमस्कार ये 3 दिन उनका अनुभव। तो 3 दिन में ये मंत्र अंदर उनको अनुभव हो रहा है। और सत्पुरुष, सत्पुरुष उसको कहते हैं जिसका मन ईश्वर में लीन रहता है, जिसका मन ईश्वर में लीन रहता है, या यूं कह लें जिसके मन का बीज ही नाश हो चुका है, जिसके मन का बीज भस्म हो चुका है,
उसको सत्पुरुष कहते हैं। इसीलिए उस सत्पुरुष को हम ईश्वर भी कहते हैं। कोई कहेगा कि ईश्वर के पास मन होता है? कोई नहीं कहेगा। ईश्वर ज्ञान रूप है, तो ज्ञान रूप है इसीलिए वो आनंद रूप है। संकल्प उठता है कोई नहीं ईश्वर के मन के अंदर, मन हो तो संकल्प उठे ना, तो संकल्प नहीं उठता है तो दुख पाएगा। जिसके मन में संकल्प उठता है वो दुखी भी होता है। सत्पुरुष मुझको ये बात सिखाना चाहते हैं कि ईश्वर कौन है, उसके बारे में एक ही बात ध्यान में आती है, वो चेतन है, सब कुछ जानता है और सदैव जानता है। चाहे मैं अमेरिका में बैठा हूं, चाहे मैं इंग्लैंड में बैठा हूं, चाहे मैं भारत में बैठा हूं, प्रभु मेरे बारे में सदैव जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो प्रभु को क्या कहा जाता है? वो चैतन्य महाप्रभु है, अर्थात सदैव केवल चेतन है। वो प्रभु केवल चेतन है। और मुझको क्या कहा जाता है? मैं जड़ बुद्धि जीव हूं। क्यों जड़ बुद्धि जीव कहा जाता है? क्योंकि मैंने इस जड़ देह को अपना स्वरूप समझ लिया है कि मैं देह हूं। तो मनुष्य जन्म लेकर मेरी बुद्धि का यदि यह निर्णय है, इसीलिए मुझको पशु कहा जाता है। वाणी तो मुझको पशु कह रही है। बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सो कोई। मुझे बात बड़ी बुरी लगती है, मैं क्या पशु हूं? मैंने तो PhD की है, मैं पशु कैसे हो सकता हूं? लेकिन जब मैं विचार करता हूं, इसी वाणी का स्वाध्याय करता हूं, इसका अध्ययन करता हूं मैं, तब मेरी बुद्धि में यह बात आती है, जो जानने वाला है वो चेतन होता है। इंद्रिय नहीं जानती है, इंद्रिय मेरी है, इंद्रिय की सहायता से मैं जानता हूं, मन की सहायता से मैं सोचता हूं, तो मन की सहायता से मैं सोचता हूं। इसका मतलब मन मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रिय मेरी इंस्ट्रूमेंट है, मैं इनका मालिक हूं। इंस्ट्रूमेंट में चेतना नहीं होती है, उसमें एक्टिविटी होती है। चेतना मालिक में होती है, चेतना जानने वाले में होती है, मैं जानता हूं। इसीलिए वाणी इस जागृत बुद्धि के लिए कि मैंने खाली यही नहीं सीख लेना है कि ईश्वर में परम सुख है, सीख लिया ईश्वर में परम आनंद है, मिलेगा कैसे, मैंने ये सीखना है। इसीलिए जो भी गुरु संसार में आया वो एक ही बात कहता है कि राम नाम सत्य। संसार में यदि कोई सत्य वस्तु है तो वास्तव में जानने योग्य है, धारण करने योग्य है, वो राम का नाम है, यही कहिए कि प्रभु। तो प्रभु का स्वरूप मेरे आगे प्रकट नहीं है, चेतन प्रभु मेरे अंदर मौजूद है। मैं तो अपने मन के प्रति चेतन हूं, वो तो सारे जगत के प्रति चेतन है, सबके मनों के प्रति चेतन है, सबके मन को जानते हैं, इसलिए वो सर्वव्यापक। तो वो प्रभु मेरे अंदर मौजूद है, तो मैंने उनके प्रति अपनी चेतना को बढ़ाना है या संसार के प्रति अपनी चेतना को बढ़ाना है? तो संसार के प्रति यदि मैं अपनी चेतना को रात दिन बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उसमें मन लगाने की कोशिश करता हूँ, इंद्रिय लगाने की कोशिश करता हूँ, तो हर रोज मेरा पतन हो रहा है। और पतन कैसा है? जो मुझको मेरे दुख को, मेरी मानसिक बेचैनी को, मेरे मानसिक क्लेश को रोज बढ़ा रहा है। तो क्या कमाई कर रहे हो? कौन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? कौन से पदार्थ इकट्ठे कर रहे हो? किन सुखों का भोग कर रहे हो? तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा मानसिक क्लेश रहा है, नित प्रति बढ़ रहा। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार अब आपको निर्णय हो जाएगा क्या कारण है कि विश्व में जो भी देश सबसे ऊंचा उठा, क्योंकि कोई ना कोई तो हाईएस्ट नंबर लाता ही है, तो जगत में भी कोई ना कोई देश आगे बढ़ जाता है, एक दिन अमीर हो जाता है, सारी दुनिया पे राज्य करने वाला हो जाता है। इसलिए हमेशा से एक शब्द यूज होता है, चक्रवर्ती राज। किसे कहते हैं चक्रवर्ती राज? तो संसार रूपी पूरा चक्र है, पूरे चक्र का जो मालिक हो वो चक्रवर्ती राजा हो, सब उसके अधीन है। लेकिन वाणी क्या कह रही? बाल ना बीता कर सके चक्रवर्त भूपाल। जो ईश्वर भक्त है उसका बाल बीका भी वो नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ सकता, चाहे वो चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो। इसका मतलब हो गया कि सतपुरुष किसी के अधीन नहीं है, वो सदैव स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि वो देह है ही नहीं, वो स्वयं ईश्वर सत्ता है। इसलिए वाणी कह रही है सतगुरु तो अंतर रंग है, पल पल करे पुकार। तो वो तुझको अंदर से पुकार रहा है कि तू मेरी तरफ आ, तू संसार की तरफ भाग रहा है, संसार को गुरु बना रखा है। तो अपने बारे में भी धोखे में आ जाता हूं, गुरु के बारे में भी धोखे में आ जाता हूं, और ईश्वर के बारे में भी मैं धोखे में आ जाता हूं। ईश्वर को भी आकार समझ लेता हूं, बाहर आकार की पूजा करता हूं, गुरु को भी आकार समझ लेता हूं, इसलिए गुरुओं के नाम से धोखा खा जाता हूं। अपने को भी आकार समझ लेता हूं, शरीर समझ लेता हूं, अपने बारे में भी धोखा खा जाता हूं, मर जाता हूं। मेरी मौत है नहीं, जब मौत नहीं है तभी तो मेरा पुनर्जन्म अर्थात नई देह मुझको मिलती है, और मेरा मन मुझको वापस दे दिया जाता है। जैसे भी मैंने मन तैयार किया, मन मेरी प्रॉपर्टी है, जो प्रभु मुझको वैसे का वैसे ही प्रदान कर देते। अब बताइए मेरी बुद्धि का निर्णय, यदि मैंने सतबुद्धि धारण की है, ईश्वर का निर्णय जिसमें इस प्रकार का जैसा वाणी कह रही है, तो बुद्धि तो यही है ना, अगले जन्म में मन तो वही है ना। अब बताइए जिसने वर्तमान जन्म में सतबुद्धि तैयार की, मन के अंदर प्रभु सिमरन के संस्कार तैयार किए, अगला जन्म कितने आनंद में उसका होगा, कितने चैन में उसका होगा। सारी दुनिया में क्लेश होगा लेकिन उसके मन के अंदर चैन होगा। ये बात सीखनी है तो महाराज जी के जन्म से सीख सकते हैं, तीन वर्ष में ये उम्र में महाराज जी की क्या दशा है। इसलिए ये वाणी कोई कहानी नहीं कहती है, ये निर्णय कहती है। इसलिए एक बात कह रही है क्या कि एक परमेश्वर सर्व आधार सिमर सिमर इस बारंबार, सारे जगत का आधार, तेरे जीवन का आधार, तेरी मंजिल प्रभु है, इसलिए उनके लिए तुझे संसार में केवल गुजारा कर काम दे, तब तेरा मनोरंजन सफल होगा, ये जन्म भी सफल होगा और अगला जन्म भी तुझको श्रेष्ठ मिलेगा, संस्कार तेरे शेष होंगे वहां भी तू सफल होगा। हो सकता है एक दिन ईश्वर के साथ एक हो जाए और उसको मोक्ष।